भूमि को वहां पर रोते और दर्द से बिलखते हुए छोड़कर आकाश कमरे से बाहर चला गया था। उसके जाने के बाद भूमि अपने हाथों की तरफ देख रही थी, जो बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। उसका दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था और अब आंसू बंद हो रहे थे, क्योंकि आंखों में भी रोने की हिम्मत नहीं बची थी। धीरे धीरे उसकी आंखें भी बंद होती जा रही थी और वो वहीं जमीन पर एक तरफ गिरी और बेहोश हो गई। आकाश बाहर आया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। उसकी गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी, लेकिन उसे जाना कहीं भी नहीं था। कुछ देर बाद उसने अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी से बाहर आया। बाहर आकर वो बोनट से टिककर खड़ा हो गया और सिगरेट पीने लगा। एक सिगरेट खत्म होती तो वो दूसरी जला लेता, दूसरी खत्म होती तो तीसरी जला लेता। ऐसे न जाने कितनी ही सिगरेट वो पी चुका था और अब उसके पास सिगरेट भी खत्म हो चुकी थी। उसने सिगरेट की खाली डिब्बी वहीं जमीन पर फेंकी और वापस गाड़ी में बैठा। गाड़ी में बैठकर उसने एक लंबी सांस ली और गाड़ी स्टार्ट की। क्लब XYZ। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी एक क्लब के बाहर आकर रुकी। उसने अपनी पॉकेट में से अपना फोन निकाला और किसी को एक मैसेज किया। रिप्लाई आने पर उसने फोन वापस अपनी पॉकेट में डाला और गाड़ी से बाहर आकर क्लब के अंदर आ गया। क्लब के अंदर आकर वो एक काउंटर पर बैठा और ड्रिंक करने लगा। कुछ देर बाद ही एक आदमी उसके सामने आकर बैठी और आकाश को देखने लगी। आंखों ही आंखों में उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया और आकाश ने ड्रिंक का गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो आदमी ड्रिंक का गिलास उठाते हुए बोला, अगर किसी इंसान से उसकी पहचान छीन ली जाए तो वो इंसान किसी लायक नहीं रहता। आकाश एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, आकाश रायचंद को किसी पहचान की जरूरत नहीं। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, लेकिन तुम्हारी दुनिया में आकाश कुछ भी नहीं। स्काई की दुनिया स्काई का इंतजार कर रही है, लेकिन फिर स्काई दुनिया में तब तक नहीं आ सकता जब तक राजा साहब ना चाहें। आकाश व्यंग से मुस्कुराया और उस आदमी की तरफ देखते हुए बोलने लगता है, तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं है। मेरी जान की कीमत तुम क्या लगाओगे? मेरी जान राजा साहब की अमानत है, इसीलिए जब तक उनका हुक्म है तब तक ये धड़कनें चल रही हैं, और अगर उन्होंने हुक्म दिया तो ये सांसें यहीं थम जाएंगी। उसके जाने के बाद आकाश ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ ड्रिंक का गिलास देखा। सुबह के 4 बजे हुए थे, इसीलिए उस क्लब में सिर्फ 2-4 लोग थे। आकाश ने गुस्से से कांपते हुए अपने हाथ में पकड़े गिलास को जोर से दबाया तो वो गिलास टूट गया और कांच पूरा आकाश के हाथ में धंस गया। उसके हाथ से खून बह रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही थी। अभी भी उसकी आंखों में एक अलग ही दहशत थी। उसे आज शाम की बातें याद आ रही थी। आकाश जब रूम में अपनी फाइल ढूंढ रहा था, लेकिन उसे अपनी फाइल मिल नहीं रही थी, तो वो महल से निकलकर अपनी एक पर्सनल जगह पर गया, जो उसने इंडिया आने से पहले ही रेडी करवा रखी थी। उस जगह पर वो आकाश बनकर नहीं, स्काई बनकर गया था। इंडिया में रहकर भी हर एक एक्टिविटी वो वहीं से कर रहा था, लेकिन वहां पर जाकर उसे एक बहुत बड़ा झटका मिला। अमेरिका में उसकी हर एक जगह को किसी ने कंट्रोल में कर लिया था, फिर चाहे वो उसके इल्लीगल कामों की जगह हो या उसका ब्लैक जोन, जिसमें उसने न जाने कितने ही लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ था। उसके अमेरिका के सारे इल्लीगल अकाउंट्स, जिसमें अरबों की तादाद में पैसा था, वो सब किसी और के कंट्रोल में हो चुके थे। अगर साफ साफ देखा जाए तो इस वक्त स्काई से उसका सब कुछ छीन लिया गया था। उसके वो सिक्योरिटी लॉक जिनकी एक्सेस सिर्फ स्काई के पास थी, अब स्काई भी उन्हें अनलॉक नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी हाथों में बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा, जिसमें 5 बजने वाले थे। एक नैपकिन लेकर उसने अपने हाथ से बहता हुआ खून साफ किया और अपनी जगह से उठकर क्लब के बाहर आ गया। बाहर आकर वो गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। न जाने कब तक उसकी गाड़ी यूं ही सड़कों पर दौड़ती रही। उसे सुबह होने का इंतजार था, पूरी रात बीतने को थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद बिल्कुल भी नहीं थी। अगर कुछ उसकी आंखों में था तो वो थी एक जलती हुई आग, जो न सिर्फ उसकी आंखों में बल्कि उसके दिल और दिमाग में भी थी। अगली सुबह अरुणिमा को पता चल गया था कि रात में आकाश घर आया था और भूमि को अपने साथ कहीं ले गया है। तब से ही उसका मन बेचैन हो रहा था। वो बस एक बार भूमि को सही सलामत देखना चाहती थी, और इसीलिए वो आस्तिक के कमरे में उसे ढूंढने गई थी। लेकिन आस्तिक इस वक्त अपने कमरे में नहीं था। एक नौकर ने बताया कि वो इस वक्त जिम एरिया में है। अरुणिमा तेज कदमों से जिम की तरफ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिम में आस्तिक ट्रेडमिल पर था। तभी उसका फोन वाइब्रेट होता है। अपने फोन को देखकर उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। वो फोन की तरफ देखते हुए बोला, एक दिन भी इंतजार नहीं हुआ तुमसे। खैर, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, बोलते हुए उसने अपना फोन अपनी पॉकेट में वापस डाल दिया और जिम एरिया से वापस रूम में आने लगा। लेकिन तभी अरुणिमा उसके सामने आ जाती है और कहती है, आस्तिक मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन आस्तिक मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ सारी बातें होंगी,
लेकिन डाइनिंग टेबल पर। चलो, अभी बहुत जोर से भूख लग रही है। आस्तिक ने अरुणिमा को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और उसे लेकर कमरे में आ गया। वो अरुणिमा को कमरे में छोड़कर वॉशरूम चला जाता है और फिर तैयार होकर नीचे आने लगा था। लेकिन अरुणिमा हैरान हो गई थी। आस्तिक इस वक्त कहाँ जा रहा है? अभी तो ऑफिस का टाइम भी नहीं है, तो फिर वो कहाँ जा रहा है? डाइनिंग टेबल पर इस वक्त कोई भी नहीं था, क्योंकि ये वक्त नाश्ते का नहीं है। अभी तो आधे से ज्यादा लोग सोकर भी नहीं उठे हैं। लेकिन अरुणिमा ने जल्दी से आस्तिक के लिए सैंडविच बनाया। आस्तिक ने अरुणिमा का बनाया हुआ सैंडविच अपने हाथों में लिया और उसके माथे पर किस करता हुआ वो उसे सैंडविच को लेकर गाड़ी में बैठकर कहीं निकल गया। पूरे रास्ते वो ड्राइविंग करते हुए सैंडविच को मजे से खा रहा था। शायद उसे पता था कि इस सैंडविच के स्वाद से ज्यादा एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो अब होगी। कुछ ही देर बाद आस्तिक की गाड़ी सिंगल बॉर्डर पर खड़ी थी और हाईवे की दूसरी तरफ एक और गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। आस्तिक अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और उस तरफ पढ़ने लगता है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि आकाश ही था। आकाश ने जब आस्तिक को अपनी तरफ आता हुआ देखा तो उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है।